ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपां तमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। आरुरुक्षन्ति मायाभे उत्सि सृप्सन्ति ये दिवम् तान्दस्योन्विदुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादतः। आरुरुक्षन्ति मायाभे उत्सि सृप्सन्ति ये दिवम् तान्दस्योन्विदुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादतः। आरुरुक्षन्ति मायाभिर् उत्सि सृप्सन्ति ये दिवम् तान्दस्योन्विदुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादतः। आरुक्षन्ति मायाभे सृप्सन्ति ये
अभी तो ये
आरुरुक्षन्ति मायाभिर् तान्दस्योन्विदुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादतः। आरुरुक्षन्ति मायाभिर् वैष्णवी शब्दार्थ आरुरुक्षन्ति व्यक्ति जो उच्च लोकों को जाना चाहते हैं, माया भी तथा कथित योग शक्ति या विज्ञान के भौतिक विकास द्वारा उत्सृप्सन्ति या ऐसे झूठे प्रयासों से मुक्त होना चाहते हैं। ये जो व्यक्ति दिवम स्वर्ग लोक को तान ऐसे लफंगों तथा गुंडों को दस्युन ऐसे चोरों को विदुनोमी मैं नीचे गिराता हूँ, अज्ञान मूर्ख पूर्वस्मात पिछला च भी पदात पद से अध नीचे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूं। तात्पर्य, विभिन्न लोगों के लिए निस्संदेह भिन्न भिन्न लोक हैं। जैसे कि भगवद गीता 14वें अध्याय 18वें श्लोक में कहा गया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी पुरुष उच्चतर लोकों को जा सकते हैं, किंतु जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, उन्हें उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दिवम शब्द उच्च लोकों का द्योतक है, जो स्वर्ग लोक कहलाता है। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्ध जीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोकों से उच्च लोकों को जाने का प्रयास करे तो वह उसे नीचे धकेल दे। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोगों द्वारा कृत्रिम यांत्रिक साधनों से स्वर्ग लोक जाने का ही प्रयास है। यह प्रयास सफल नहीं हो सकता। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिक साधनों द्वारा, जिसे यहाँ पर माया कहा गया है, उच्च लोकों को जाने का प्रयास करता है, उसे ब्रह्मांड के निम्न भागों में नरक लोक में भेज दिया जाता है। उच्च लोकों में जाने के लिए पर्याप्त सद्गुण चाहिए। तमोगुणी पापी पुरुष तथा मदिरापान मांस भक्षण तथा अवैध यौनाचार में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करेगा। चलो प्रभुपाद की जय। तो पांचवें श्लोक से पूर्व जो पहले चार श्लोक है उनका अनुवृत्ति करना आवश्यक है, क्योंकि उनका अनुवृत्ति हुआ नहीं है। तो चारों श्लोकों का मैं श्लोक पढ़ूंगा और उनका मैं अनुवाद कहूंगा। प्रथम श्लोक, श्री शुक उवाच, अथो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतस परस्य पुंस परयानुकंपया जग्नुर्भृशं शक्र समीरणादय तांस्तान्द्रणेयैरभिसंहता पुरा। अनुवाद, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। वैरोचनाय संरब्धो भगवान पाक शासन उदय छद्यदा वज्रम प्रजा हाहेति चक्रुषुः। जब सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया तो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। वज्रपाणिस्तमाहेदम तिरस्कृत्य पुरहसितम मनस्विनम सुसंपन्नम विचरन्तम महामृधे। गंभीर सहिष्णु तथा लड़ने के साज सामान से बलि भांति सज्जित बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। नटवन मूढ़ माया भीर माये शानो जिगीषसी जित्वा बालान निबद्धाक्षान नटो हरिति तद्धनम। इंद्र ने कहा, रे दूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर कभी कभी उसका धन चुरा ले जाता है, उस प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखाकर हमें परास्त करना चाहते हो। तत्पश्चात प्रकृत श्लोक, आरुरुक्षन्ति माया भीरुत्सि सृप्सन्ति ये दिवं तांदस्युन विदुर्नोम्य ज्ञान पूर्वस्माच्च पदाददः। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी वक्तों को जो यहां पे कृपा पूर्वक आए हैं। विशेष रूप से मैं इसोलिनेस कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये जो पूरा प्रसंग है, इसको यदि एक वाक्य में कहना चाहें, जो देवासुर संग्राम है या ये जो समुद्र मंथन का प्रसंग है, इसको यदि एक वाक्य में कहना चाहें तो ये प्रसंग हमें क्या दिखाता है? ये प्रसंग हमें दिखाता है कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के पक्ष पाती है। पूरे प्रसंग में ये बात हमें देखने को मिलती है, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के यानी सुरों के देवताओं के पक्ष पाती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, सभी जीवों के लिए मैं समान हूं, मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। पर फिर भी ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते उनके तरफ मैं पक्ष पाती हूं, ऐसा भगवद गीता में कहते। पहले कहते मैं समान हूं, फिर अपनी बात काट देते हैं, ऐसे भगवान के वचन है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं तो समान हूं, किसी का द्वेष नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता। यदि यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी, पर बात को यहीं खत्म ना करते हुए अपने पहले वाक्य को काटते हुए कहते ये भजन्ति तु माम, वहां पे किंतु परंतु के बाण चला देते हैं। इस प्रसंग में क्या हो रहा है, इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में पुनः शक्ति मिल गई है। सच बात बोले अमृत पीने के बाद भी असुर उनको लगभग हराने ही वाले थे, पूरा झगड़ा इसी बात का था कि देवताओं ने छल पूर्वक सारा अमृत पी लिया और वो छल करने में भी भगवान ने पक्षपात किया। यदि भगवान पक्षपात नहीं करते तो अमृत आधा आधा विभाजित हो जाता है और देवता और दानव दोनों शाश्वत रूप से अमर हो जाते हैं। अमर नाम पड़ा सिर्फ देवताओं का, दानवों का नहीं, दैत्यों का नहीं। वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि छल पूर्वक जो अमृत है वो सिर्फ देवताओं को मिला, असुरों को नहीं। उसमें भी भगवान ने पक्षपात किया। पूरे प्रसंग के आरंभ से भगवान पक्षपात करते आ रहे भक्तों के लिए। वास्तव में असुरों ने सामने से आक्रमण नहीं किया था, देवता खुद श्रीहीन हो गए थे, पूरे समुद्र मंथन की कथा तब से शुरू होती है जब देवताओं ने दुर्वासा मुनि का अपराध कर दिया। दुर्वासा मुनि वैकुंठ से भगवान का प्रसादी माला लेकर आ रहे थे और वो प्रसादी माला उन्होंने इंद्र को दिया। ये कहते हुए इंद्र जिसके गले में रहेगा माला मैं आशीर्वाद देता हूं उसकी अग्र पूजा होगी। पर इंद्र ने अवहेलना करके वही माला ऐरावत के गले में पहना दिया और ऐरावत को उसका कीमत नहीं मालूम था। ऐरावत ने पैरों तले रौंद दिया तो दुर्वासा ने श्रीहीन होने का वैकुंठ से आई हुई श्री को तुमने जिस प्रकार पैरों तले रौंद दिया है तुम्हारे सारे स्वर्ग लोग श्रीहीन हो जाएंगे इस प्रकार प्रमाद करने पर। तो जो श्रीहीन हो गए तो ये आरंभ में देवताओं की भूल हुई। पूरा प्रसंग इसलिए आरंभ हुआ क्योंकि देवताओं से भूल हुआ है और वो भी सभी देवताओं से भूल नहीं हुआ है, एक से भूल हुआ है। अपराध एक करता है भुगतना सबको पड़ता है, अन्य देवताओं को इसमें क्या दोष था। पर दोष यह है अपराध एक करता है भुगतना सबको पड़ता है। एकः खलोपि यदि नाम भवेत् सभायां मोघी करोति विदुषां निखिल प्रयत्नान् एकापि पूर्णमुदरं मधुरै पदार्थै आलोड्य रेचयति हं तन्मक्षिकाग्निम्। किसी एक सभा में, विद्वानों की सभा में यदि एक भी धूर्त आ जाए तो वो एक धूर्त पूरी सभा को उसका मूड खराब करने में सक्षम है। या किसी सभा में सभी विद्वान हो पर एक व्यक्ति कोई गलत काम कर दे तो सभा पे पानी फेरने के लिए वो काफी है। उदाहरण दृष्टांत क्या दिया गया है, अच्छा मिठाई का बड़ा डब्बा हो और डब्बे में अच्छा मिठाई हो और सब मिठाई खा लिया, पेट तो भर गया, और आखिरी मिठाई में मक्खी बैठी हो, आप समझ रहे, मरी हुई, और वो आखिरी मिठाई खा लिया तो पहले का खाया हुआ पूरा उल्टी करा के निकाल देगा, आप समझ रहे हैं। वैसे ही वो एक विद्वान सभी विद्वानों की सभा में एक व्यक्ति का किया हुआ गलत काम पहले के किए हुए सभी अच्छे कामों पे पानी फेरने के लिए सक्षम है। यहां पर यह हुआ। ये होने के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है अभी मैं तो स्वयं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से हम मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, ठीक है सब ठीक हो जाएगा जैसा हर बार होते आया है। वास्तव में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं भूमिर निष्खलिता नाम भूमिरेवावलंबनम त्वयि जाता पराधा नाम त्वमेव शरणम प्रभु। यदि कोई भूमि पे फिसल के गिरे तो भूमि उसका आश्रय होती है, आप समझ रहे। तो जिसके प्रति अपराध किया जाए उसी व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए। यहां पे अपराध हुआ किसी और के प्रति और आश्रय लिया जा रहा है किसी और का। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था तब दुर्वासा मुनि भी गए थे भगवान विष्णु के पास। उस समय भगवान विष्णु ने ये कह दिया, जिनके प्रति अपराध किया है ना उनसे जाके क्षमा मांगे, क्योंकि वहां पे भक्तों का अपराध किया था ना, बहुत परम भक्त का, उत्तम भक्त का अपराध किया था ना, इसलिए। यहां पे देवताओं को भगवान विष्णु ने ये नहीं कहा कि दुर्वासा मुनि से क्षमा मांग लो, भगवान ने ये कह दिया, एक तो फटकारा भी नहीं, डांट भी नहीं लगाया। सोचिए इतना पक्षपात है, गलती हो तो कुछ फटकारना चाहिए ना, कुछ डांट लगाना चाहिए ना? कुछ फटकारा भी नहीं, डांट भी नहीं लगाया, उल्टा ये कह दिया इस समय असुरों से संधि कर लो, वो संधि करने में तुम्हारा भला है, अभी संधि कर लो, क्योंकि इस समय शुक्राचार्य की कृपा उन पे बनी हुई है। क्या गुरु की कृपा बनी हुई है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हराना असंभव है, इस समय संधि कर लो असुरों से। और फिर एक दृष्टांत भी दिया भगवान ने, स्वयं एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे एक पेटी में यदि एक चूहा और एक सांप हो, बंद हो, तो सांप को चाहिए कि चूहे से मैत्री कर ले, खाए नहीं उसको, क्यों? संधि कर ले उस समय, क्या है बाद में चूहा ना पेटी को काट देगा, उसमें छेद कर देगा, वो सांप नहीं कर सकता, और एक बार छेद कर देगा ना फिर खा लेना उसको। ऐसे भगवान ने उदाहरण भी दिया, आप समझ रहे, भगवान इतना भारी पक्षपात कर रहे, एक तो गलती हुआ है देवताओं की तरफ से, पहला असुरों ने उसका लाभ उठाया है बस, और लाभ उठाने में क्या गलत है, असुरों ने लाभ उठाया उसको, लेकिन भगवान कर रहे पक्षपात देवताओं का आरंभ से। भगवान उल्टा बता रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं, तुम सांप की तरह हो और असुरों को चूहे की तरह हो, और दोनों एक ही पेटिका में बंद हो, तो पहला काम यह है चूहे से संधि कर लो। ये उदाहरण दिया भगवान ने। शास्त्रों में एक बात कही जाती है, असज्जन और सज्जन, ये जो दो व्यक्ति होते हैं, ये सुई के आगे के भाग और पीछे के भाग की तरह रहते हैं, आप समझ रहे हैं? असज्जन और सज्जन, सुई का आगे का भाग छेद करता रहता है और सुई का पिछला भाग उस छेद को बुझाता रहता है। वैसा ही देवताओं और भगवान विष्णु में संबंध है। श्री राधाराज प्यारे जी की, वैसे ही देवताओं और भगवान विष्णु में संबंध है। कभी कोई छेद करते ना, कोई गलती हो जाए ना, तो पीछे से बुझाने के लिए आ रहे भगवान विष्णु, ये संबंध है। अनुकुरुत खल सुजनाव अग्रिम पाश्चात्य भागयो सूच्या विदधाति रंध्रमेको गुणवान अन्यस्तु पिदधाति। एक छेद करता है और दूसरा उस छेद को बुझाता है, जैसे सुई का आगे का भाग और सुई का पीछे का भाग, वैसे भगवान किसी और के लिए ये काम नहीं करते, किसी और के लिए नहीं करते, ये सिर्फ सुरों के लिए करते हैं, देवताओं के लिए करते हैं, अपना मान के किया है भगवान ने देवताओं के लिए। फिर भगवान ने कहा ठीक है, उसके बाद एक और कार्य करना, ये कार्य ऐसा करना कि संधि करते समय असुरों को यह कह देना कि समुद्र से अमृत मंथन करने का हम प्रस्ताव आपके सामने लेके आ रहे हैं, संधि के साथ साथ एक प्रस्ताव लेके आए हैं, सारे वनस्पति जड़ी बूटियां सब कुछ समुद्र में डालेंगे इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र का मंथन करेंगे। वासुकी नाग को समुद्र मंथन करने के लिए रस्सी बनाएंगे और मंथन करने के बाद जो अमृत आएगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो इस प्रकार से संधि करते समय भगवान ने सब बताकर दे दिया कि ये सब करना, और साथ में भगवान ने एक भविष्यवाणी कर दी, क्लेश भाजह भविष्यन्ति दैत्या यूयम फलप्रद। दैत्यों को, असुरों को सिर्फ क्लेश मिलेगा समुद्र मंथन में। क्लेश भाजा भविष्यन्ति दैत्या यूयम फलप्रद, फलग्रह, आपको फल मिलेगा, असुरों को मिलेगा क्लेश। मतलब भगवान के पास जाने पे भगवान ने पूर्ण रूप से उनको चिंता मुक्त कर दिया। तो ये भगवान के शरण ग्रहण करने का फल है कि कोई भगवान के शरण ग्रहण करता है पूर्ण रूप से चिंता मुक्त होकर वापस आ जाता है। बस शरणागति पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट सरेंडर, जिसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। जब शरणागति पूरी हो जाए तो भगवान ऐसे मित्र की तरह रक्षा करते हैं जैसे अन्य कोई मित्र संसार में न कर पाए। जो सच्चा मित्र होता है उसका लक्षण दिया गया शास्त्रों में, वैसे मित्र भगवान बन के आए इनके लिए। क्या लक्षण दिया गया शास्त्रों में सच्चे मित्र का? कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्र उच्यते। कराविव शरीरस्य, जैसे दो हाथ है, शरीर पे कोई प्रहार होने वाला हो बिना विचार किए दो हाथ रक्षा करते हैं, उस पर पहले विचार नहीं करते रक्षा करे या नहीं, आप समझ रहे हैं? उसमें कोई विचार नहीं किया जाए, जैसे दो हाथ शरीर की रक्षा करते बिना विचार किए। नेत्रयोरिव पक्ष्मणि, और जैसे आंखों पे प्रहार होने वाला हो तो पलक जैसे बिना विचार किए रक्षा करती है। अविचार्य, बिना विचार किए प्रियम कुर्यात, जैसे रक्षा करते हित करते है। तन मित्रम मित्र उच्चते, वैसा जो मित्र होता है उसको सच्चा मित्र कहते हैं। भगवान ने बिना अधिक विचार किए सीधा बोल दिया ठीक है ये सब कर दो, कोई अपेक्षा रखे बिना। भगवान चाहे तो वहां पे ये कह सकते थे अच्छा मैं तो कर दूंगा रक्षा, बदले में मुझे क्या मिलेगा, आप समझ रहे हैं? बदले में कुछ होना है, कुछ लेन देन होना चाहिए ना, कुछ यदि कुछ फेवर कर रहे हैं सामने वाले पर तो पहले पूछा जाता है ना कि आप क्या देंगे। तो भगवान ऐसे भक्तों के प्रति व्यवहार नहीं करते, भगवान भक्तों के प्रति सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, और बाद में एहसान भी नहीं जताएंगे कि देखो याद करो पिछले युग में मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, ऐसे कभी एहसान नहीं जताएंगे। कि बाहर की दुनिया में कोई अच्छा कार्य कर दे, कोई उपकार कर दे तो वो आजीवन जताता भी रहेगा, देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या किया था, तुम्हारी ये सहायता की, तुम्हारा वो सहायता किया। जबकि भगवान निरपेक्ष भाव से, इसके एक शब्द प्रयोग करना चाहिए, निरपेक्ष भाव से अपने भक्तों की सहायता करते। इसलिए भक्तों का कर्तव्य है निरपेक्ष भाव से भगवान को शरणागत होना। मेरे शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज ये कहते थे, अंग्रेजी में कहते थे, यू शुड हैव फुल सरेंडर अन टू कृष्णा। सरेंडर शुड नॉट बी पार्शियल, आर्टिफिशियल और कंडीशनल, आप समझ रहे? कंप्लीट सरेंडर एंड टू कृष्ण। सरेंडर शुड नॉट बी पार्शियल, आर्टिफिशियल और कंडीशनल। मतलब शरणागति पूर्ण होनी चाहिए, आधी शरणागति नहीं होनी चाहिए। आधी शरणागति मतलब मैं इतना दे सकता हूं भगवान इस समय पूरा नहीं दे सकता, ये नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल सिर्फ बाहरी शरणागति, हाँ भगवान मैं आपका शरणागत हूं ऐसा मुख से कह देना, आपके उसको इंग्लिश में कहते हैं लिप सर्विस। लिप सर्विस मतलब सिर्फ लिप से सर्विस करना, हृदय से उसका भाव नहीं होना, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से शरणागत होना। और कंडीशनल, कंडीशनल मतलब शरणागत होना पर कुछ टर्म एंड कंडीशन रखना, कुछ शर्त रखना, भगवान मैं आपकी शरणागति स्वीकार करूंगा बस मुझे मुंबई में अच्छा बड़ा फ्लैट दे दो ताकि मैं ठीक से रह सकूं। आप समझ रहे हैं? तो ये शरणागति आर्टिफिशियल ना होए, पार्शियल ना होए और कंडीशनल नहीं हो। जिसकी शरणागति पूर्ण हो जाए भगवान उसको मित्र की तरह रक्षा करते, यहाँ इस प्रसंग में दिखाया गया है। और मित्र की तरह रक्षा तो दूर की बात, खुलेआम पक्षपात कर रहे, खुलेआम पक्षपात किया जा रहा है। पहले ही देवताओं को कह दिया कि आप विजयी हो गए, दानवों को सिर्फ क्लेश भोगना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, बड़ा पहाड़ उठा के मंदर पर्वत उठा के समुद्र में डालने के लिए जा रहे थे, तब देवताओं और असुरों दोनों को बहुत क्लेश हुआ पर्वत उठा के डालने में समुद्र में। उस समय एक समय तो पर्वत जमीन पे आ गिरा और बहुत सारे देवता और असुर उसके नीचे कुचले गए। उस समय भी भगवान ने कृपा करके दोनों को जिलाया, जिंदा किया, जीवित किया और फिर खुद उठा के पर्वत रखा। जबकि कार ये भगवान का खुद का कार्य नहीं है, देवताओं के हित के लिए किया जा रहा है, इसलिए भगवान ने देवताओं के हित के लिए खुद उठाकर रखा। फिर जब मंथन शुरू हुआ उस समय पर्वत डूबने लगा क्योंकि नीचे कोई बेस नहीं था, स्टेबल नहीं था, तो उसके लिए भगवान खुद वहां नीचे उसकी नींव बनकर आए। और नींव बन के आए फिर ऊपर से भी वो स्टेबल नहीं था, ऊपर से भी डगमगा रहा था, भगवान ऊपर से भी उसको पकड़े और बीच में मंथन करते करते दोनों का, देवताओं और असुरों दोनों का साहस समाप्त हो, शक्ति समाप्त हो गई। उसके बाद भगवान ने अपनी स्वयं की शक्ति दोनों में संचारित की और कभी कभी तो भगवान स्वयं दोनों तरफ से मंथन करने लगे। और वो तो छोड़िए, जब हलाहल विष बाहर आया तो भगवान के गुणावतार भगवान शिव ने बिना कोई कंडीशन रखे, बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई एहसान नहीं जताया, कुछ नहीं, सिर्फ दूसरों का हित करने के लिए परम वैष्णवता का कार्य किया। उस समय आचार्य एक श्लोक कहते, जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया उस समय आचार्य एक श्लोक कहते, तुंगात्मनाम तुंगतरा समर्था मनोरथान पूरयितुं न नीचा, धाराधरा एव धराधराणां निगाददाहं शमितुं न नद्य। बड़ी बड़ी विपत्तियों को ठंडा करने के लिए, बड़ी बड़ी विपत्तियों को भगाने के लिए बड़े हृदय वाला व्यक्ति चाहिए, ये छोटे हृदय वाले व्यक्ति का काम नहीं है। बड़ी विपत्ति को भगाने के लिए बड़े हृदय वाला व्यक्ति चाहिए। उदाहरण, धाराधरा एव धराधराणाम, जब गर्मी से पूरा पर्वत जलने लगता है, पर्वत को गर्मी महसूस होने लगती है, उस समय छोटी छोटी नदियां उसकी गर्मी नहीं दूर कर सकते, उसके लिए बड़े बादल चाहिए पूरे आसमान में छाए हुए, और जब वो बादल बरसेंगे तब जाके उसकी गर्मी शांत होगी। ये छोटे छोटे नदियों का काम नहीं है। वैसे ही पूरे संसार पे विपत्ति आ गई है, कोई बहुत बड़े हृदय वाले व्यक्ति चाहिए जो बिना ये पूछे कि मुझे क्या मिलेगा, आप समझ रहे, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा,
ये बिना सोचे वो कार्य करे, ये सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वभाव होता है सज्जन व्यक्ति का। जैसे चंद्रमा को शीतलता चंद्रमा ने कोई तपस्या करके नहीं प्राप्त की, वो चंद्रमा का स्वभाव है। ऐसे सज्जन का स्वभाव होता है कि निरपेक्ष होकर सबका भला करता है। और आचार्य एक और उदाहरण भी देते हैं इस विषय में। सज्जन का कभी कभी ऐसा स्वभाव होता है कि यदि प्राणों का भी भय आ जाए फिर भी दूसरों के लिए हित करेंगे, प्राणों का भी भय हो जाए तो भी हित करें। वो हलाहल विष वास्तव में प्राणों का भय है, और कोई उसको पी रहा है तो भगवान शिव है, वो तो अमर है, नहीं मरेंगे, लेकिन कोई और पीता उसके लिए तो अवश्य प्राणों का भय हो ही जाता था। लेकिन फिर भी सज्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं कि प्राणों का भय उपस्थित होने पर भी अच्छा कार्य करते हैं। ऐसा एक कार्य किया था दधीचि मुनि ने, जब इंद्र को वज्र बनाकर देना था दधीचि मुनि ने अपना अस्थि दे दिया, उसमें प्राण भय था, प्राण चले जाने का भय था, फिर भी सज्जन व्यक्ति ऐसा होता है कि प्राण चले जाने पर भी कुछ अच्छा कार्य करके जाते है, ये सज्जन का स्वभाव होता है। उसके लिए आचार्य उदाहरण देते है। क्या उदाहरण देते है? सुजनो न याति विकृतिम परहित निरितो विनाश कालेपि छेदे पिचंदन तरु सुरभयति मुखम कुठारस्य। विनाश काल उपस्थित होने पे भी सज्जन व्यक्ति परोपकार नहीं छोड़ता। जैसे चंदन का पेड़, जो कुल्हाड़ी उसको काटती है उसी कुल्हाड़ी को सुगंधित करके जाता है। यदि कुल्हाड़ी काट भी दे उस कुल्हाड़ी को सुगंधित करते हुए जाते हैं, ये सज्जन का स्वभाव है। और भी बहुत सारे उपकार किए। मोहिनी मूर्ति अवतार लिया, उसके बाद मोहिनी मूर्ति अवतार लेकर भगवान ने उनको देवताओं को अमृत पिलाया। अमृत पीने के बाद देवता अमर हो गए, और ये अमर होने के बाद इंद्र ने इतने गर्व से कह दिया कि तुम बलि क्या हमसे छल करते हो, क्या हमसे छल करोगे। तो छोटे बच्चे को जैसे, इस श्लोक में छोटे बच्चे को जैसे कोई जादूगर आंखें बंद करके पैसे चुरा लेते हैं ना, वैसे तुम हमको मत समझो, वैसे हमको, हम छोटा बच्चा नहीं तुम्हारे सामने कि हमारी आंखें बंद करके हमसे पैसा छुरा के ले जाओगे, ये गलती बिल्कुल मत करना। अभी ये किसके बल पे बोल रहे? भगवान के बल पे बोला जा रहा है, आप समझ रहे हैं? भगवान के बल पे ये बोला जा रहा है कि भगवान ने ताकत दी है ना, इतना भगवान के बल पे ये सब बोला जा रहा है। गर्वोक्ति कहते इसको, गर्वोक्ति मतलब बहुत गर्व से कही हुई चीज, ये गर्वोक्ति भगवान के बल पे हुई है। सही बात कहे तो जब असुरों को नहीं मिला अमृत, और असुरों को अमृत ना मिलने पे असुरों ने जो युद्ध किया देवताओं के साथ, उसमें भी देवताओं ने असुरों को बहुत पीटा, बहुत मारा उन्हें। उसके बाद अंत में कोई और उपाय ना देखकर बलि महाराज ने आसुरी माया प्रकट कर दी। आसुरी माया प्रकट कर दी मतलब सभी जगह से नंग धड़ंग असुर आके सब जगह प्रकट होकर देवताओं पर आक्रमण करने लगे, ऊपर पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे, ऐसी माया प्रकट की। उसमें देवता इतने हताहत हुए, यानी कि अमृत पीने के बाद भी लगभग हारे हुए जैसे हो गए, आप समझ रहे? अमृत पीने के बाद भी लगभग हारे हुए जैसे हो गए। उसके बाद भी, इतना पक्षपात करने के बाद भी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए गरुड़ जी पर, और बहुत सारे असुरों को खुद वहां पे अपने हाथ से मारा। वहीं कालनेमी को धराशायी किया भगवान ने, अपने हाथ से मारा है भगवान ने। कौन कहेगा कि पक्षपात नहीं है? जब तक युद्ध नहीं हुआ था तब तक आप देवता और असुरों के एकदम मध्यस्थी बने हुए थे, और युद्ध हुआ तब आपने एक समय आके आपने सीधा पक्ष लिया है देवताओं का, सीधा पक्ष लिया गया है। इसका कारण श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है 8:9-28 में। एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फलमंजसापु यत्पाद पंकज रज श्रयणात्न दैत्या। एवं सुरासुर गणा, दोनों असुरो और असुरो, देवो और दानवो, दोनों ने समदेश काल, समान देश था, समान काल था, सब कुछ समान, प्रयत्न भी समान किया, सब कुछ समान डाला। फले विकल्पा, लेकिन फल उल्टा हुआ। क्या फल उल्टा हुआ? तत्रामृतम सुरगणा फलम अंजसापु, और अमृत सिर्फ देवताओं को मिला। क्यों मिला? उसका कारण दिया, यत्पाद पंकज रज श्रयणात्, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर रखा है, यानी शरणागति पूर्ण थी उनके, इसलिए भगवान ने पक्षपात किया। न दैत्या, पर दैत्यों को शरणागति नहीं थी इसलिए नहीं किया, भगवान ने कोई पक्षपात उनके साथ, उनके उनके विरुद्ध पक्षपात किया। एक वाक्य में कहूं तो भगवान ने देवताओं के प्रति बहुत परम अनुकूलता दिखाई और असुरों के प्रति बहुत प्रतिकूलता दिखाई। इस प्रसंग में बहुत प्रतिकूलता दिखाई गई असुरों के प्रति। भगवद गीता का वाक्य सिद्ध कर दिया, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, पर ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो मेरा भक्ति भजन करते उनको तो मैं अवश्य पक्षपात कर अवश्य करता, खुलेआम पक्षपात कर रहा हूं, यहां के उनके उनके तरफ से आके लड़ाई भी करूंगा, विपक्ष को मारूंगा भी। अरे आपके तरफ के जो लोग हैं उन्होंने अमृत पान कर रखा है, आप जरा सोचिए तो सही, आपके तरफ के लोगों ने अमृत पान करके रखा है, दूसरे सामने वाले पक्ष के व्यक्तियों ने अमृत पान भी नहीं किया है, कम से कम उनको बराबर पे तो लाइए। नहीं, ये ऐसा भगवान का भक्तों के प्रति पक्षपात है। लेकिन इसमें भी एक व्यक्ति है जो हारने पे भी बहुत बड़ी जीत प्राप्त कर गया, हारने पर भी जो बहुत ऊंची तरह से जीत गया, वो बलि महाराज। बलि महाराज की विकट परिस्थिति को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान स्वयं आक्रमण करने आए, भगवान ने कालनेमी, माल्यवान इत्यादि कई राक्षसों को धराशायी भी कर दिया, उसके बाद भी एक भी श्लोक में एक नहीं कहा गया है कि बलि महाराज ने भगवान पे प्रहार किया। शास्त्रों में कहा गया है छह प्रकार के लोग आतताई होते, आतताई मालूम जिसको प्रभुपाद जी कहते थे एग्रेसर, इंग्लिश में कहते एग्रेसर। भगवद गीता में भगवान ने बताया है आतताई, उसकी व्याख्या आचार्य ने की है। अग्निदागर दश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापह क्षेत्र दारापहारी च षडे तेज आतताई न। अग्निदह जो आग लगाता है, अंग्रेजी में कहते वन हू सेट्स फायर। गर दश्चैव जो विष देता है, यानी वन हू गिव्स पॉइजन। शस्त्र पाणिर जो शस्त्र हाथ में लेके आक्रमण करने आता है, वन हू अटैक्स विद डेडली वेपन्स, ये तीसरा है। यहां भगवान विष्णु फिट बैठ रहे, आप समझ रहे, धर्मानुसार यदि बलि महाराज प्रतिकार भी करते धर्मानुसार कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि अततई ही का काम किया गया है। जो शस्त्र लेकर आता है सामने से, उस पर वापस शस्त्र प्रहार कर सकते, उसमें क्या बुरा है। लेकिन बलि महाराज ने यहाँ पे शस्त्र प्रहार भी नहीं किया इसको, इसलिए बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य कहे जाते हैं। सब शरणागत हो गए, भगवान प्रतिकूल होकर भी आए तब भी बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया। विकटता समझने का प्रयास करना चाहिए परिस्थिति का। सामने वाले तो उल्टे शब्द सुना ही रहे हैं, अपने खुद के पक्ष वाले कितना उल्टा सुना रहे होंगे, अपने खुद के पक्ष वाले कितना उल्टा सुना रहे होंगे, जिसका तुमने भजन किया जीवन भर, जिसका शरणागति किया, अरे बलि वो आज देखो देखो कौन से पक्ष में है, ये भजन किया तुमने, आप समझ रहे हैं, जिसका पूरे आज जीवन भजन किया तुमने, वो भगवान आज तुम्हारे विरोध में खड़े है। बलि आज भी शस्त्र नहीं उठाओगे, आज भी नहीं शस्त्र उठाओगे, आज तो धर्म है, आज कर्तव्य है। पर नहीं, ये भक्त है, भगवान भी यदि प्रतिकूल हो जाए, भक्त हमेशा परम अनुकूलता का व्यवहार करेगा भगवान के प्रति, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और फिर क्या कहा गया है, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम, आनुकूल्यन, ये मुख्य लक्षण है उस श्लोक का। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये तो गौण लक्षण है, माइनर फैक्टर है, मेजर फैक्टर तो ये है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, हमेशा भगवान के प्रति अनुकूलता पूर्वक व्यवहार रखना, कभी भगवान के प्रति प्रतिकूलता नहीं दिखाना। इसमें बलि महाराज ने जो उदाहरण स्थापित किया है, इससे इंद्र के ऊपर भी उनका वर्चस्व इस पूरे प्रसंग में स्थापित हो जाएगा। कोई और होता तो कह देता अभी बस हो गया, ये इतना समय अनुकूल रह के भी ये हमारे विरोध में आ गए लड़ने के लिए। शुक्राचार्य ठीक कहते थे, इनके शरणागत मत हो, ठीक बात बताए थे गुरु महाराज, क्या गलत बोले थे, क्या गलत बोले थे, एक बार कोई व्यक्ति होता तो ये सोच सकता। लेकिन भक्त ऐसा है ना, क्योंकि प्रेम का बंधन है ना, वो ऐसे नहीं टूटता है। आश्लिष्य वा पाद रताम पिनष्टु माम, पिनष्टु मतलब रौंद दो मुझको, पाद रताम पिनष्टु माम, रौंद दो पैर के तले, रौंद दो मेरे को, अदर्शनम मर्म हताम करो तुवा, या मुझे दर्शन न देके हृदय छिन बिन कर दो मेरा, यथा तथा वा विध धातु, जैसा विधान करना है वैसा करो, हे लंपट, ये जाते जाते बोल के जाता हूं, तुम कौन हो लंपट, हे लंपट जैसा विधान करना है वैसा करो, मत प्राणनाथस्तु सएव, तुम फिर भी हमारे प्राणनाथ हो। इसको कहते आत्मनिवेदन, ये बलि महाराज का आत्मनिवेदन है। ऐसे व्यक्ति की कीर्ति भगवान ऐसे अमर कर देंगे, अगली बार इनको इंद्र बनाएंगे। बलि अगली बार आप इंद्र बनोगे, इंद्र तो है अच्छे है, पर मैं चाहता हूं कि ऐसा भक्त इंद्र हो, इसलिए अगली बार आपका नंबर है बलि महाराज। इस अनुकूलता के विषय में मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा। अगर कलयुग में कोई एक समान उदाहरण जैसा कि यदि किसी ने स्थापित किया है, समान यानी समांतर उदाहरण यदि किसी ने स्थापित किया है, वह श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। और वो कब स्थापित हुआ, जब जलदूत पे प्रभुपाद जी चढ़े थे। मुझे पहले ऐसा लगता था कि प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर चढ़े थे, ऐसा मुझे बताया गया था। बाद में किसी ने मेरी भ्रांति दूर कर दी, किसी ने मुझे बताया कि वो 40 रुपए भी प्रभुपाद जी ने अपने बेटे को दे दिए थे, वो बेटा जो छोड़ने आया था उसको 40 रुपए दे दिया था। मेरी भ्रांति थी प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके चढ़े, पर मेरी भ्रांति दूर हुई कि वो 40 रुपए अभी प्रभुपाद जी ने उनके बेटे को दे दिया था, क्योंकि वहां जाके क्या इस्तेमाल हो गया, इंडियन रुपए है, दे दिया। तो मतलब कुछ नहीं, अकिंचन होके वो जहाज पे चढ़े थे। तुम भगवान का कार्य करने के लिए जा रहे है, भगवान कृष्ण का कार्य करने के लिए जा रहे है। और उधर जलदूत पे चढ़ने के बाद पहली जो घटना हुई वो ये हुई कि पहले ही कुछ दिनों में उनको हार्ट अटैक, हृदय का विकार, झटका आया। वो भी एक नहीं आया, कितने आया? परिस्थिति की विकटता समझिए, किसी व्यक्ति ने पूरे संसार से झगड़ा किया है इस दिन के लिए, आप समझ रहे हैं, पूरे संसार से परिवार तक को त्यागा है। दुर्जय गृह संकलम, पूरे परिवार को त्याग के लगभग संसार से झगड़ कर इस दिन के लिए तैयारी किया है। वो दिन आ जाता है और वो दिन आने पर इस प्रकार की विपत्ति उपस्थित होती है कि ऐसा लगता है कि अभी सब खत्म हो गया। एक समय, किसी ना किसी एक समय शायद उनके मन से ये भी बात गई होगी कि जो कार्य के लिए मैं निकला हूं शायद अब वो ना हो पाएगा। इस परिस्थिति में भी अपनी अनुकूलता का त्याग किए बिना प्रभुपाद जी ने वहां पे पोयम लिखा था कि नचाओ नचाओ, जैसा नचाना है वैसा नचाओ, भगवान आपको जैसा नचाना है वैसा नचाओ, कठपुतली की तरह नचाना है आपको, नचाओ आप। ये शरणागति देखकर उसी समय भगवान कृष्ण उपस्थित हो गए। ये शरणागति देख के भगवान उपस्थित हुए और हृदय पे हाथ रख के बोले, अब फिक्र नहीं करना, ठीक है, अभी बिल्कुल फिक्र नहीं करना, अब मैं स्वयं सारे अवतारों के साथ हूं और आपका जो नाम पड़ गया है ना निर्विशेष शून्यवादी, वो इसलिए क्योंकि यहां साक्षात बुद्ध देव भी है सभी अवतारों में, वो आपके साथ आ रहे हैं, जब उनका आशीर्वाद है आपके साथ कि आप उन्हीं के बनाए हुए फिलोसफी को आप हराओगे पाश्चात्य देश में आके, मैं तो हूं ही, साथ ही साथ मेरे सारे अवतार भी है जिसमें भगवान बुद्ध भी है, उनके फिलोसफी को आप निरस्त करने के लिए आप जाओगे। इसलिए प्रभुपाद जी फिर बिना हिचके हमेशा कहते थे ऑल द टेम्पल्स आर देयर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस, समय सब मंदिर हो गया, सब बन के रेडी है, बस सिर्फ समय की बात है। ये शरणागत भक्त के प्रति भगवान का वात्सल्य है, शरणागत भक्त के प्रति भगवान के पक्षपात है। आज मैं यहां पर अल्प विराम दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने जो यहां पर आकर सुना, कुछ भूल चूक हो गई हो या कुछ अधिकार से अधिक कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। चलो प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है यदि किसी को पूछना है तो जी बोलो।
प्रश्न नहीं है, एक छोटा सुझाव है कि हम इस कथा प्रसंग में भगवान को पार्शलिटी करके संबोधन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में है कि क्यों ना इसे वात्सलता कहा जाए।
जी,
वात्सल भगवान नहीं है, पर अपने शरणागतों के प्रति वात्सल होना ये कोई बुरा नहीं है।
जी,
तो भगवान यहाँ असुरों के प्रति वात्सल्य है।
जी, बहुत बहुत अच्छा कहा आपने कि उसको पक्षपात ना कह के उसको वात्सल्यता कहना चाहिए। वास्तव में मैं भी इसी पक्ष में था कि मैं उसको वात्सल्य कहूं, लेकिन जो भगवद गीता का श्लोक मैंने पढ़ा ना कि समोहम सर्व भूतेषु, उसके टीका में मैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका पढ़ा, उसमें टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सीधा बोल रहे पक्षपातो पक्षपातिनो हम, मैं सीधा पक्षपाती हूं। तब मुझे लगा चलो आचार्य तो शब्द प्रयोग कर ही रहे हैं, उनका अनुगामी बन के क्यों ना शब्द प्रयोग कर लिया जाए, इसलिए मुझे थोड़ा बल मिला। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ, यदि किसी को पक्षपात ये शब्द नहीं ठीक लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ,
क्योंकि भगवान इतनी दया की मूर्ति है जो किसी के प्रति कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन उनके स्वभाव में है ही नहीं। पुतना के प्रसंग में हम देखते हैं तो कैसे बुरा कर सकते हैं।
जी सही बात
तो
है,
भगवान के प्रति कुछ भी बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता है।
जी जी। अरे किसी और को कोई प्रश्न पूछना?
हरे कृष्णा। आप बताए शरणागति के लक्षण में तो अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षित विश्वास हो, गोप्तत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधम शरणागति। जो प्रभु के सेवा में अनुकूल हो उसे स्वीकार करना, प्रतिकूल हो उसे त्याग देना। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जो अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षित विश्वास हो कि गोविंद भगवान हमारी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। वरण्यम कि प्रभु ही हमारे पालनहार है, वही हमारा पालन करने वाले हैं, उनके कृपा के बिना कोई भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण कर देना कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं। कार्पण्य, हमें कोई कष्ट हो तो प्रभु को निवेदन करना, ये शरणागति के 6 लक्षण है। हरे कृष्ण।
आप बहुत अच्छा श्लोक बोले प्रभु जी, इसी श्लोक को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बंगाली में बहुत अच्छी तरह से गाया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय दाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाय शरणागति भकतेर प्राण। फिर 6 अंग, दैन्य आत्म निवेदन गोप्तृत्वे वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। और फिर अंत में कहते हैं, शरणांग शरणागति हई बेजाहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिसके पास ये 6 अंग वाली शरणागति है उसी की प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं, जिसके पास नहीं है उसके सुने या ना सुने ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन जिसके पास है उसको तो विवश होके उसकी प्रार्थना भगवान को सुनना ही पड़ता है। धन्यवाद प्रभु जी। दूधामृत प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप पक्षपात के बारे में जो बता रहे थे, मैं ऐसा एक क्लास में सुना था कि बता रहे थे कि भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं।
सही बात।
क्यों? क्योंकि जब युद्ध हो रहा था, क्योंकि भगवान के हाथों से मरना और भगवान के हाथों से बचना दोनों सेम ही है, यहाँ पे पक्षपात कहाँ से आ गया? क्योंकि भगवान के हाथों से अगर बचेंगे तब भी मुक्त रहेंगे, अगर मरेंगे तब भी मुक्त रहेंगे।
तो यहाँ पर पक्षपात कहाँ से हुआ है? इसमें पक्षपात इस तरह से हुआ है कि अमृत मंथन के लिए जो बताया गया उसमें भगवान ने जो उपाय बताया, पहले तो संधि कर लो, दूसरा अमृत मंथन के लिए प्रस्ताव दो और उन्हें ये कहो, झूठ कहो कि तुम्हें आधा मिलेगा। आप समझ रहे हैं, भगवान ने सीधा सीधा कह दिया था और श्लोक भी बता देता हूं कौन सा श्लोक बोला था भगवान ने। 8:6:22 या 23 में भगवान कहते हैं, क्लेश भाज भविष्यन्ति दैत्या यूयम फलग्रह। दैत्यों को सिर्फ क्लेश मिलेगा और आपको फल मिलेगा, आप समझ रहे हैं। इसलिए मैंने वहां पर एक बात कहा, क्योंकि यदि परिश्रम समान है, ये भी मैंने श्लोक यहाँ पर एक बार श्लोक बोला था, परिश्रम समान था, देश समान था, काल समान था, सब कुछ, परिश्रम के बदले फल नहीं मिलना चाहिए क्या? आप मुझे एक धर्म की बात बताइए, परिश्रम के बदले फल मिलना चाहिए या नहीं? संसार में कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए यदि परिश्रम करे तो वो परिश्रम के बदले उसको क्या मिले? जीरो। फल मिलना चाहिए। और जो फल छीन ले, जो फल छीन ले, एक उसको पक्षपात करना अवश्य कहेंगे। इसलिए मैं बोले, जब भगवद गीता की टीका में चले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, और वही सिर्फ वही नहीं, बाकी आचार्य भी कहते हैं, भगवान कभी कभी खुले हम पक्ष लेते हैं। वो जो निर्विशेष ब्रह्म है ना, इम्पर्सनल ब्रह्मन, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि उसका तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। वो कहां को उसका, तो वो तो सभी जगह है, कौन सी जगह में वो नहीं है निर्विशेष ब्रह्म? वो तो देवताओं में भी है, असुरों में भी है, वो आप में भी है, मुझ में भी है, सर्वम खल विदम ब्रह्म। वो कहां से किसी का पक्ष लेगा? पर जिसको कहते ना गॉड हैज पर्सनैलिटी, आप समझ रहे हैं, पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी के साथ पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। जिसको इसमें विशेष रुचि हो, इस विषय में जिसको एकदम डिटेल में स्टडी करना हो, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं अष्टादश महादोषा, मनुष्यों के 18 महान दोष जो मनुष्यों में होते हैं। और टीका में श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि यही 18 दोष भगवान के शरीर में कैसे होते हैं, पर इन अ ट्रांसेंडेंटल वे, मतलब उससे भगवान का कोई कीर्ति कम नहीं होता है। जिसको विशेष इच्छा हो, वो भगवान के 18 महादोषों के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में श्री जीव गोस्वामी की टीका में पढ़ सकता है। उदाहरण, एक दोष है क्रोधाना, आप समझ रहे हैं, एक दोष है ये क्रोधाना, पर ये भगवान कृष्ण ने दिखाया था। किसके विरोध में क्रोध दिखाया था? कंस के विरोध में दिखाया, आप समझ रहे, शिशुपाल के विरोध में दिखाया था। निर्विशेष ब्रह्म को तो क्रोध नहीं आ सकता, आप समझ, क्योंकि वो तो ब्रह्म है, सब जगह फैला हुआ है, उसको काहे का क्रोध आना। लेकिन जब भगवान स्वयं और मूल विग्रह श्री कृष्ण, क्योंकि पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी के साथ छोटा छोटा दोष भी आता है, भगवान खुशी से स्वीकार करते हैं, ये सिद्धांत है।
थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण।
हरी।
यहाँ बताया कि जो अपना कृत्रिम उपाय से कोई प्रयास करता है उच्च लोक जाने के लिए, तो उसको मैं निम्न लोक में भेजता हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि रावण भी किया था, तो उसको फिर नीचे भेजना चाहिए, थोड़ा बताइए इसके बारे में।
इसलिए प्रभुपाद जी एक कथा बताते रावण की, ये कथा बंगाल में बहुत प्रचलित है, वास्तव में ये शायद आनंद रामायण से है, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है, शायद आनंद रामायण से, कि रावण ने एक बार सीढ़ी बनाया था। बंगाल में एक मुहावरा है, स्वर्ग थे के सीढ़ी, ऐसे कहते, वो मुहावरे की वजह से, वो मुहावरा वो रावण के जो आनंद रामायण में शायद लिखा हुआ है उसके इतिहास से बताया गया है, कि वो रावण ने बोला काहे को इतना बड़ा संग्राम हुआ देव असुरों का, बलि महाराज को पराजय स्वीकार करना पड़ा, अरे छोड़ो ये सब, मैं ही सीधा सीढ़ी बनाए देता हूँ, और कोई रोकेगा तो है ना, शिवजी तो हमारे ही है, हाँ रोकेगा तो देख लेंगे, उसमें क्या है, शिवजी को प्रसन्न वैसे ही कर रखा है हमने, तो देख लेंगे, वो कौन इंद्र आएगा, शिवजी के सामने कौन आएगा, चलो सीढ़ी बनाना शुरू करो। तो रावण जो तो बनाने का प्रयास करता है, लेकिन वो सीढ़ी बार बार तोड़ दिया जाता है, आप समझे क्यों? देवलोक में जाने के लिए कुछ योग्यता है, कुछ क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन
हितोपदेश में देकर रखा है। मुझे वो श्लोक को याद करना पड़ेगा, मैंने कल ही देखा था। किसी की हिंसा नहीं करता, सबसे अच्छा व्यवहार रखता है सज्जन लोगों से, जो अच्छा व्यवहार, सामने से किसी की हिंसा नहीं करता, सज्जन व्यवहार रखता है, सभी जीवों की सेवा करने के लिए परायण रहता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए योग्य है। जबकि असुरों का स्वभाव है नहीं वैसा, हिंसा के बल पर जीते हैं, हिंसा से छीनते हैं, हिंसा से खाते हैं, आप समझ रहे हैं, हिंसा पूर्वक खाते, मांस खाना हिंसा पूर्वक खाते हैं, ये सब चीज से नहीं स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। अब प्रभुपाद जी एक और उदाहरण भी देते, एक लौकिक उदाहरण देते। एक बार प्रभुपाद जी को अमेरिका का वीजा मिलने में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो प्रभुपाद जी ने एक जगह पे लिख के दिया, जैसे समृद्ध देश के लोग असमृद्ध देश वाले लोगों को आसानी से आने नहीं देना चाहते। प्रभुपाद जी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, इट्स ऑल राइट, कोई गलत बात नहीं इसमें, वो वीजा में इतना सख्ती कर रखा है, कोई गलत बात नहीं, ये नियम सिर्फ इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग लोक में भी ऐसा है। समृद्ध देश के लोग ना, जो कम समृद्धि वाले हैं, उनको आराम से आने नहीं देना चाहते, आराम से नहीं आने देना चाहते। पदे पदे संसार में देखा जाता है, बड़े बड़े कुछ क्लब बनाते हैं ना लोग, क्लब मतलब मेंबरशिप होता है, अमीर लोगों का क्लब, और अमीर लोगों के क्लब में कोई गरीब को नहीं आने देगा आराम से, क्यों नहीं आने देगा, ये एक प्रवृत्ति है सब में, उस स्वर्ग लोक में भी प्रवृत्ति है, वो स्वर्ग लोक में भी प्रवृत्ति है ये। कल को यदि भारत एकदम समृद्ध हो जाए, तो हमारी गवर्नमेंट भी शायद ये काम करे, जो असमृद्धि हमारे जो समृद्धि है उससे कम समृद्धि के देश वाले लोग यदि आने लग जाए, हमारी गवर्नमेंट भी सख्ती करेगा, सही बात है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हम सबका वही मानसिकता है, और ये मानसिकता स्वर्ग लोक में भी है।
कोशिश किया ऊपर लोग जाने के लिए, उसको निम्न लोक में जाना चाहिए ना, ऐसा यहाँ पे बताया है।
यहाँ पे इंद्र गर्वोक्ति कह रहे, जैसे मैंने कहा गर्वोक्ति मतलब मैं उसको और रसातल में भेज दूंगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि बलि महाराज सच में जाएंगे, वो एक गर्व से कही हुई युक्ति, क्योंकि नया नया बल मिला है ना, आप समझ रहे, भगवान नारायण अभी आ गए ना, भगवान नारायण आ गए तो देख के सब में शक्ति संचार होगा, अरे वाह ये तो साक्षात लड़ने के लिए आ गए हमारी तरफ से, और काल नेमी का तो वही धराशाही कर दिया यहाँ पे, आप समझ रहे, ये नए शक्ति संचार से गर्वोक्ति हुआ है कि तुमको तो मैं अब और नीचे दबा डालूंगा, तो भगवान विष्णु ऐसा नहीं होने देंगे।
अच्छा, और दूसरा सवाल है कि अगर कहीं भी हम देखते हैं युद्ध महाभारत में या रामायण में, भगवान उपदेश देते हैं कि पहले संभल जाओ, उसके बाद में नहीं संभलोगे तो फिर झगड़ा या लड़ाई होना है, जारी रहेगा, तो ऐसा यहाँ उपदेश कुछ दे नहीं रहे भगवान असुरों को, तो क्या ऐसा बताइए,
लड़ाई झगड़ा होने से पहले भगवान शांति दूत बनकर आते हैं, आपका ये कहना है कि नहीं, हाँ
उपदेश देते हैं,
हाँ उपदेश किसको, हाँ
झगड़ा क्यों करते हो,
हाँ
तो यहाँ पे दे नहीं रहे हैं आप कोई उपदेश,
यहाँ पे भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया, सीधा सीधा भगवान ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि भगवान का ऐसा स्वभाव है, कुरुक्षेत्र में भगवान ने क्या किया, पहले पूरे शांति दूत बनकर आए, दोनों को समझाया, फिर भी नहीं हुआ, ये कृष्ण का एक विशेष अरेंजमेंट है, कृष्ण का एक विशेष स्वभाव है, कृष्ण ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण ये चाहते थे कि अंत तक ऐसा ना लगे कि पांडव युद्ध के लिए उत्सुक थे, ऐसा अंत तक ना लगे, वहां पे पांडवों का होते हुए भी पांडवों से छीना गया था, वो भी छल से छीना गया था, छल से छीना है, यहाँ पर असुरों ने छल से नहीं छीना है, वो देवताओं से खुद से गलती हुआ है, और देवताओं से गलती होने के बाद अपराध हुआ है, अपराध होने के बाद देवताओं को वो स्थान रिक्त करना पड़ा है, देवता श्रीहीन हो गए है, असुरों ने अपना स्वाभाविक आधिपत्य जमा लिया, आप समझ रहे, तो दोनों प्रसंग में कुछ भेद है, समान नहीं है,
इसलिए भगवान के व्यवहार में भी भेद है, समान नहीं है। जैसे जैसा प्रसंग होता है उस अनुसार व्यवहार किया जाता है। जी प्रभु।
हरे कृष्णा। इट्स फॉर माय क्लियरिफिकेशन कि आपने बताया कि भगवान ने कंस को मारा था तो उस समय भगवान कृष्ण ने गुस्सा किए थे, तो उसमें जैसे पुतना का भी उदाहरण दिए थे, तो भगवान कृष्ण जो है वो हर हमेशा आनंद प्रदान करते हैं। लाइक कृष्णा के एग्जाम्पल, पुतना के एग्जाम्पल में भगवान कृष्ण का जो दूसरा फॉर्म मतलब उनका अवतार मान ले शिव जी ने विष पिया और भगवान कृष्ण स्वयं दूध पीने का काम किया। लाइक गुस्सा करते तो उनका वो विष्णु फॉर्म मारते हैं डिमंस को, लेकिन वो हर हमेशा आनंद प्रदान करते हैं। इज इट ओके?
जी, ये आचार्य की उक्ति है कि मारना सब वासुदेव के हाथ से और प्रेम प्रदान करना ये कृष्ण के हाथ से, इसलिए कृष्ण सर्वाकर्षक और सर्वमंगल है। लेकिन ये एक दृष्टिकोण है और आचार्य ने फिर बाद में भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे मैंने कहा अष्टादश महादोषेर कि मनुष्य में जो 18 दोष होते हैं महादोष होते, ऐसे तो हजारों हो सकते हैं लेकिन आचार्यों ने 18 महादोष गिने हैं। और ये 18 महादोष जो है ये वहां भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने बता कर दिए है। ये दक्षिण विभाग में है 18 महादोष, उसमें श्री जीव गोस्वामी उदाहरण जब देते हैं सभी 18 दोष बोलते हैं। भगवान के शरीर में भी कभी कभी उपस्थित होते हैं लेकिन कभी कभी होते हैं, और ये भगवान में दोष नहीं है अपितु महताम दूषणम भूषणम, महान लोगों में दोष भी आभूषण की तरह हो जाए। नील कंठवत, जैसे शिव जी को वो जो नीला हुआ कंठ नीला हुआ वो आभूषण बन के रह गया, आप समझ रहे। यद्यपि विष है, दोष है वो, पर महताम महान लोगों के लिए दूषणम भूषणम, दूषण भी भूषण हो जाता है, छोटा सा दोष भी आभूषण के समान हो जाता है। वैसे भगवान में ये छोटे छोटे दोष भी यदि कभी कभी दिखाई दे वो भगवान के आभूषण की तरह हो जाते हैं। तो उसमें जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, क्रोध जो है उसमें क्रोध का उदाहरण देते हुए इसलिए जीव गोस्वामी बताते कि जैसे शिशुपाल को मारा है या जैसे कंस को मारा है, उसमें भगवान वासुदेव ही आप कह लीजिए, ठीक है, वासुदेव भी भगवान ही है, वासुदेव ने वहां पे क्रोध प्रकट किया था। तो क्रोध प्रकट करना उसी समय के लिए छोटा दोष है लेकिन भगवान में वो आभूषण की तरह स्थापित होता है। ये सिद्धांत स्थिरता से सभी भक्तों ने समझ कर लेना चाहिए।
वो क्रोध विष्णु फॉर्म प्रकट किए कि कृष्ण प्रकट किए?
आचार्यों का ये मत है कि भगवान कृष्ण स्वयं ने ये वासुदेव रूप से करवा के लेते, वासुदेव चतुर्भुज वासुदेव रूप से करा के लेते।
थैंक यू।
अभी समय सीमा समाप्त हो गया, यदि कोई एक प्रश्न किसी के पास, हाँ बस एक आखिरी प्रश्न बस समाप्त।
हरे कृष्ण। बलि महाराज को जब ये समुद्र मंथन हो रहा था ये कौन सा मनवंतर था? 6 मनवंतर है। तो फिर बलि महाराज तो 7 नंबर मनवंतर में वो स्वर्ग में इंद्र होना चाहिए था।
श्री रूप गोस्वामी लघु भागवत अमृत में बताते हैं समुद्र मंथन 2 बार हुआ, 2 मनवंतर में हुआ था, 6वें और 7वें। 2 बार मोहिनी मूर्ति का अवतार, मोहिनी मूर्ति अवतार के प्रसंग में वहां पे श्री बलदेव विद्याभूषण जी की टीका में आपको देखना होगा, वहां पे टीका में स्पष्टीकरण किया गया है समुद्र मंथन की लीला 6वें और 7वें 2 मनवंतर में हुआ था। तो 7वां जो प्रेजेंट है उसकी बात, और पहले 6वें में भी हुआ था। तो भागवत में जो बताया गया है वो 7वें मनवंतर की कथा है, ये वहाँ टीका में स्पष्ट करके दे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद सो जी। चलो प्रभुपाद की नेताय गौर प्रेमानंदे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यस्य पतितानां पावनेभ्यो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके साधिका कनाय प्रभु को और सभी भक्तों को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे, और हिज होलीनेस कृष्ण क्षेत्र महाराज को जो बहुत पेशेंटली महाराज जी ने बैठ के यहाँ पर मेरा उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद।